तफसीर सूरत अल-कहफ आयत नंबर 27। वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमातिह वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा। असहाबे कहफ का किस्सा खत्म हो चुका है, अब यहाँ से दूसरा मजमून जो है वो शुरू हो रहा है। एक खास बात मैं सूरत कहफ के हवाले से आपके सामने रखना चाहती हूँ कि सूरत अल कहफ का ज्यादातर हिस्सा किस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आपने असहाबे कहफ का वाकया पढ़ा, फिर आप थोड़ी आयतों के बाद आप दो बागों का वाकया पढ़ेंगी, दो बागों का किस्सा, फिर इसके बाद आप आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस के बारे में पढ़ेंगी, वो के मुख्तसरन होगा, तो तीन वाक्य हो गए। चौथा जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की कहानी आप पढ़ेंगी, और फिर पांचवा जो है वो जुल्करनैन का वाक्य पढ़ेंगी इंशाल्लाह। तो इस तरह सूरत अल कहफ का ज्यादातर हिस्सा इन किस्सों में गया है। 110 आयात में से 71 आयात में ये वाक्यात बयान किए गए हैं, और 71 आयात के अलावा जो आयात हैं इनका बड़ा हिस्सा भी इन्हीं किस्सों पर के तबसरे पर मुश्तमिल है, और बीच बीच में कहीं कयामत इंसानी जिंदगी के मनाजिर भी पेश किए गए हैं। और अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वतलू और तिलावत कीजिए, वतलू और तिलावत कीजिए और पढ़ते रहिए, मा ऊहिया इलैका जो कुछ वही की गई आपकी तरफ, मिन किताब रब्बिक अपने रब की किताब में से, या मुबद्दिला लिकलिमाते कोई नहीं बदलने वाला इसकी बातों को इसके कलमात को, वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा और आप हरगिज नहीं पाएंगे इसके सिवा कोई पनाह की जगह, और आप अल्लाह से बचकर भागने के लिए कोई जाए पनाह ना पाएंगे। अब आप देखिए कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया है कि आप कुरान मजीद की तिलावत करें और कुरान मजीद को लोगों के सामने, अहले मक्का के सामने पेश करें। अब आप देखिए कि अहले मक्का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा करते थे कि अगर आप कुरान में कुछ रद्दो बदल कर लें, कुछ कंप्रोमाइज कर लें, तो हम आपके साथ मसालियत करने को तैयार हैं। अब यहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बजाहिर खिताब है, लेकिन मकसूद कुफार को ये बताना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम में अपनी तरफ से कोई कमी बेशी करने के मजाज नहीं है। उनका काम बस ये है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उसे बेकमोकास पहुंचा दे, और तुम्हें मानना है तो पूरे दीन को जूं का तूं जो अल्लाह की तरफ से पेश किया जा रहा है उसे मानो, नहीं मानना तो शौक से ना मानो, मगर ये उम्मीद ना रखना कि तुम्हारी मर्जी के मुताबिक इस कुरान में इस दीन में कुछ जो है वो तरमीम कर दी जाएगी या कुछ जुजवी तब्दीली कर दी जाएगी। तो उनका ये मुतालबा, वो बार बार ये कहते थे ना अहले मक्का कि हमारे अबाओ अजदाद की रस्मों ही का लिहाज रखो, हमारे बुतों को ही बुरा ना कहो, या वो ये कहते थे जैसे सूरत यूनस की आयत 15 में आप पढ़ चुकी हैं, वाइजा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात क़ाल अल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना एति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिल हो, कि जब हमारी आयात साफ साफ इनको सुनाई जाती हैं तो वो लोग जो कभी हमारे सामने हाजिर होने की तवक्को नहीं रखते कहते हैं कि इसके बजाय कोई और कुरान लाओ या इसमें कुछ तरमीम ही कर डालो। तो यहां पर भी जो है वो अहले मक्का का ये मुतालबा कि कुरान में तरमीम कर दी जाए या उनकी कोई बात मान ली जाए या कुछ जुजवी ही मसालियत कर ली जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुखातिब रसूल अल्लाह को किया है, लेकिन तंबी जो है वो झुठलाने वालों को की है, अहले मक्का को तंबी की है। कि ए नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ भी तुम पर वही किया गया है, मा उहिया इलैका मिन किताब रब्बिक, तो जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से वही के जरिए आप तक पहुंचा है, तो आपका फर्ज क्या बनता है? वतलू, इसकी तिलावत कीजिए। वतलू जो है, या पहले भी पढ़ चुकी हैं, तालाम, वो तालाम, या दो इसके रूट हैं। एक इसके मानी है कि पढ़ना, तिलावत करना, और दूसरे इसके मानी है पैरवी करना, अतात करना। तो कहा कि आप तिलावत भी करें, आप इस पर अमल भी करें, हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर ही रहे थे, लेकिन फिर भी जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि इसके अंदर जो अल्लाह के अहकामात हैं और जिन बातों से अल्लाह ने मना किया है उसको बजा लाइए, इसके हलाल और हराम के पाबंद रहिए। तो अल्लाह का हुक्म जो है उसकी अताअत करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और आप ये फिक्र ना करें कि दुनिया के लोग अगर इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, दीन की तरक्की कैसे होगी, लोग दीन पर चलेंगे कैसे। ये काम आपकी, आपका नहीं है। आपका काम क्या है कि बस लोगों तक इसको पहुंचाइए। ला मुबद्दिला लिकलिमाते, फिर फरमाया कोई नहीं बदलने वाला इसकी बातों को, कि जो अल्लाह के वादे हैं, जो अल्लाह के कलेमात हैं, उसको कोई नहीं बदल सकता। सारी दुनिया भी अगर मुखालफत करे तो अल्लाह की बातों को, अल्लाह के वादों को पूरा करने से रोक नहीं सकती। और अल्लाह का वादा क्या था कि दीन इस्लाम जो है वो गालिब आएगा। वजा अल हकु वजहक अल बातिल इन अल बातिला काना जहूका। और अल्लाह का वादा क्या था कि दीन इस्लाम जो है ये बेहतरीन दीन है, और ये इस्लाम जो है इसको कामयाबी मिलकर रहेगी और कोई इसको रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे भी यही बात बताई जा रही है कि अल्लाह के फैसलों को कोई बदल नहीं सकता। और एक तो ये कि दीन इस्लाम गालिब आएगा, दूसरा अल्लाह का फैसला क्या था कि जो कुरान की मुखालफत करेगा कयामत के दिन उसका अंजाम जहन्नुम में होगा। जो गुनाहगार हैं, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, उनका अंजाम जो है वो जहन्नुम है। तो अल्लाह के इस फैसले को कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता। ला मुबद्दिला लिकलिमाते वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा। और अगर तुम किसी की खातिर इसमें रद्दो बदल करो भी, वलन तजिदा, और हरगिज नहीं पाओगे, वो जीम दाल वजदा का मतलब होता है पाना, हरगिज नहीं पाओगे मिन दूनिही अल्लाह के सिवा मुल्तहदा। मुल्तहदा जो है इसके मानी है पनाह की जगह। इसका रूट है लाम हा दाल। लहद भी आपने सुना होगा ना, कब्र के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये गड़े को भी कहते हैं, सुराख, शगाफ को भी कहते हैं। तो जो लहद होती है उसमें जो है वो कब्र की एक साइड पर जो है वो गड़ा सा बनाया जाता है, एक जानिब करके, तो और उसमें जो है फिर मैयत को दफन किया जाता है। तो इसी तरह मुल्तहदा का लफ्ज जो है ये जाए पनाह के लिए भी इस्तेमाल होता है, कि जहां पे किसी को पनाह मिल जाए, जहां पे कोई छुप कर बैठ जाए। तो कहा कि अगर आपने अल्लाह के अहकामात में तब्दीली करने की कोशिश की तो आपको अल्लाह के सिवा और कोई पनाह जो है वो नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे कोई तब्दीली करना चाह रहे थे या आपके अंदर ऐसी कोई ख्वाहिश थी। दरअसल ये अहले मक्का जो है उनको तंबीह की जा रही है, उनको जो है वो डराया जा रहा है। और मतलब क्या है कि जो अल्लाह के नाफरमान हैं उनकी दिलजोई का सोचा भी नहीं जा सकता, कि उनको खुश करने के लिए सोचा जाए कि अल्लाह के कुछ अहकामात जो हैं उसमें तब्दीली ही कर ली जाए। तो दरअसल ये जो है एक तरह की ताकीद है, एक तरह का मुबालिगा है, कि जिसमें अहले मक्का के जो सरदार थे या जो काफिर थे उनके जो मुतालबात हैं उनसे बेनियाज रहने का हुक्म दिया जा रहा है। और आप भी देखें कि आज के इस दौर में जैसे हैसियत मुसलमान के, क्या आप कुरान पर अमल करती हैं, क्या दीन इस्लाम पर अमल करती हैं, क्या आप इसकी तिलावत करती हैं और अमल भी करती जाती हैं, या ये कि कुछ हिस्से तिलावत तो पूरे कुरान की करती हैं लेकिन अमल कुछ हिस्से पे करती हैं। और ये किसका रवैया था? ये बनी इसराइल का रवैया था। आप सूरत अल बकरा में पढ़ चुकी हैं कि अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, कि वो अपनी किताब के बाज हिस्सों पर ईमान लाते थे और बाज को छोड़ देते थे, बाज पर अमल करते थे और बाज से जो थे वो सरफे नजर करते थे। आयत नंबर 28 में एक और अहम हुक्म जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, और अहले मक्का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा करते थे कि आप गरीब और मुखलिस मोमिन जो हैं आप उनको अपनी महफिल से निकाल दें ताकि हम आपकी महफिल में आकर बैठें। और जो मक्का के सरदार थे वो अपने आप को बड़ा समझते थे, अमीर थे, सरदारी थी और उनकी ऊंची जो थी वो नाक थी। और ये कौन लोग थे जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया था कि आप गरीब और गुलाम और कमजोर मुसलमानों को अपनी महफिल से निकालें, क्योंकि अगर हम उनके साथ आकर आपके पास बैठेंगे तो इससे हमारी तोहीन होगी, हम उनके बराबर नहीं बैठ सकते क्योंकि वो गुलाम हैं, वो गरीब लोग हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो हमें रवायात से पता चलता है, ये थे बिलाल बिन रिबाह, सुहेब रूमी रजी अल्लाह अन्हो, नंबर 3 खबाब बिन अर्थ, नंबर 4 अब्दुल्ला बिन मसूद, नंबर 5 अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हुम। और इसके अलावा जो सब गरीब लोग थे, जो सब गुलाम थे या आजाद करदा गुलाम थे, ये सब लोग थे। और ये कौन थे मक्का के सरदार? इस सिलसिले में हमें नाम मिलता है उमैया बिन खल्फ का, ये सरदार था हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो का, जो था वो मालिक था और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो पर जुल्म सितम करता था। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने उसकी मुंह मांगी कीमत देकर और अपने पास से एक गुलाम देकर भी हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हो को आजाद करवाया था। और इसके अलावा जो था वो ऐना आइनिया आयन या नूनहा बिन बदर अकरा बिन हाबिस, और भी जो कुछ सरदार थे उनका ये मुतालबा था। अब आप देखिए कि मैं आपके सामने से ही मुस्लिम की ये रवायत भी रखती हूं जिसे साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह उन्होंने रवायत किया है। वो कहते हैं कि हम 6 आदमी रसूल अल्लाह के पास बैठे थे तो मुशरिकीन ने आपसे कहा कि तुम इन्हें अपनी मजलिस से निकाल दो ताकि ये हमारे खिलाफ जरी ना हो जाए। साद रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि वो 6 आदमी मैं, अब्दुल्ला बिन मसूद, कबीला हुजैल का एक आदमी बिलाल और 2 दूसरे आदमी थे जिनके नाम मैं भूल गया हूं। चुनाचे आपके दिल में ये बात आई तो अल्लाह ताला ने सूरत अल अनाम की आयत 52 वला तत्रिद अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम ये नाजिल की, और जैसे फिर ये आयत भी। और आप देखें कि इस आयत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया गया है, वस्बिर नफ्सा का, वस्बिर इसके मानी है और रोके रखिए, और इसके मानी है कि आप जो है वो मुतमिन रखिए नफ्सा का अपने आप को, कि अपने दिल को आप रोके रखिए, आप मुतमिन रखिए, आप जो है उनके साथ रखिए, मा साथ उनके अल्लाह जीना जिन्होंने जो क्या करते हैं, नंबर 1 उनकी सिफ्त क्या है, यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहा, कि जो पुकारते हैं अपने परवरदिगार को, बिलगदाति इसका रूट है गैन दाल वो, और आने वाली सुबह के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो दिन गुजर जाता है उसको अरबी जबान में अमसी कहते हैं, अलिफ मीम सीन, और जो आने वाला होता है उसको गदन कहते हैं। और नाश्ते के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है गदा गदा, क्योंकि सुबह सवेरे जो खाया जाता है क्योंकि सुबह होने के बाद फौरन, तो उसके लिए नाश्ते का लफ्ज भी आता है। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य में आगे ये वाला लफ्ज पढ़ेंगी दोबारा। बहरहाल इसका रूट है गैन दाल वो। तो कहा कि वो सुबह को पुकारते हैं अपने रब को, वल अशी वल अशी, और शाम को पुकारते हैं, इसका रूट है आइन शीन वो। तो सुबह शाम पुकारने का मतलब क्या है कि वो हर वक्त अपने रब को पुकारते हैं, वो हर वक्त अपने रब की इबादत करते हैं, अपने रब को याद करते हैं। क्योंकि सुबह शाम से मुराद क्या होता है, हर वक्त, सुबह होती है या शाम होती है। और इसके मुफस्सरीन ने मानी बताए हैं अलद दवाम, मुस्तकिल, मसलसल वो अपने रब को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं, इसको आप सर्कल कर लें, वजह क्या है याद करने की। युरीदून वजहहू, वो उसकी रजा चाहते हैं, वो अपनी रब की रजा के तलबगार हैं। और ये है एक मोमिन की जिंदगी का मकसद कि अपने रब की जो है वो इबादत करना, उसको राजी करने के लिए। और दुनिया की कोई घर जो है इसके लिए नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो रब की रजा के लिए। तो ये गरीब और गुलाम जो मुसलमान थे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रजा के लिए क्या करते थे, अपने रब को याद करते थे। और आप भी सोचें कि आप अपने रब की रजा के लिए क्या काम करती हैं। क्योंकि यूं देखें तो हर वक्त कोई ना कोई नेकी कर रहे होते हैं ना, लेकिन खास तौर पर अपने रब की रजा के लिए नेकी करना, जिसमें कोई और दिखावा ना हो, कोई और नियत ना हो, कोई और मकसद ना हो, ये है असल बात ना, कि अपने रब को राजी करने के लिए नेक काम करना, अच्छे काम करना। और इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए, अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए। और मैं आपके सामने जो है वो वाकया भी रखती हूं कि जो लोग अल्लाह की रजा के लिए अमल करते हैं तो उनका अमल कैसा होता है, उनका किरदार कैसा होता है, उनकी नियतों में कितना इखलास पाया जाता है, और उनके अमल जो है वो कितने खूबसूरत होते हैं, कितने खूबसूरत होते हैं। क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो रब की रजा होता है। और इस सिलसिले में हमारी जो इस्लामी तारीख है उसमें बेशुमार वाकयात हैं जो कि जिससे हमारी इस्लामी तारीख जो है वो भरी पड़ी है। लेकिन चंद एक वाकयात जो हैं जो कि खास तौर पर हमारे सामने आते हैं, और उनमें से एक वाकया है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो थे, ये अक्सर शाम के सफर पर जाते थे और रास्ते में रक्का के मकाम पर एक सराय थी, हमेशा आप सराय में कयाम करते। और एक नौजवान लड़का था कि जब वो आप जाते तो वो आपकी खिदमत करता, वो आपसे हदीसें सीखकर याद करता और आप बड़ी शफकत और मोहब्बत से उसको हदीसें सिखाते। एक दिन जब वो सराय में पहुंचे हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, तो वो नौजवान नजर नहीं आया। आपको बड़ी फिक्र हुई, आपने लोगों से पूछा तो आपको पता चला कि वो नौजवान जो था वो किसी का मकरूज था और कर्जा अदा नहीं कर सका, कर्जा बहुत ज्यादा था और जिसे कर्जा लिया था वो अक्सर कर्जे का तकाजा करता था। और आखिरकार जो है उसको तंग किया गया उस नौजवान को और उसको गिरफ्तार करवा लिया गया और अब वो जेल में है। आप बड़े परेशान हुए और आपने ढूंढना शुरू किया कि पता चले कि वो किसका कर्जा देना था कि जिसकी वजह से वो लड़का जो है जेल में चला गया। मालूम करते करते जिसने पैसे लेने थे ना, जिससे नौजवान ने कर्ज लिया हुआ था, आप उसके घर पहुंचे और फिर उससे तन्हाई में पूछा कि सराय में रहने वाले जो वाला जो नौजवान है उसने कितने पैसे तुम्हारे देने हैं कि तुमने उसको गिरफ्तार करवा दिया है। तो उसने जो रकम बताई तो कहा कि तुम कर्जे की सारी रकम मुझसे ले लो, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा, मगर उसको छुड़वा दो। लेकिन साथ ही अल्लाह का वास्ता देकर कहा कि देखो ये राज किसी को बताना नहीं कि कैसे मैं तुम्हें दे रहा हूं। वो खुशी खुशी राजी हो गया, उसने कहा चलो जान छूटी, मेरे पैसे मुझे मिलेंगे, मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं किसी को बताऊं कि किसने पैसे दिए हैं। और अब आपने क्या किया कि उधर पैसे दिए और रात के वक्त ही वहां से चले गए, क्योंकि जाहिर पैसे देने पर नौजवान ने तो कैद से रिहा होकर सराय में आना था ना। अब नौजवान कैद से रिहा होकर सराय पहुंचा और उसे पता चला कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्ला अलैह आए थे और उसका पूछ भी रहे थे। नौजवान ये खबर सुनते ही मुलाकात के लिए बेताब हुआ और सोचा कि जैसे भी हो मैं मुलाकात करूंगा। कई दिन का सफर करते करते पूछते पूछते नौजवान हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक की खिदमत में पहुंचा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक उसे देखकर बहुत खुश हुए, उसकी खैरियत पूछते रहे, उसको दुआएं देते रहे और पूछा कि तुम कहाँ थे, क्या हुआ। तो उसने बताया कि ऐसे गिरफ्तार हो गया था। फिर ऐसे ही उसने बताया कि सराय में कोई अल्लाह का बड़ा ही नेक आदमी आया था और उसने अल्लाह की रजा की खातिर मेरे सारे कर्जे की रकम अदा कर दी और मैं रिहा हो गया। और फिर वो नौजवान जो था कहने लगा, मालूम नहीं वो कौन था, और फिर बहुत दुआएं देने लगा और कहने लगा कि मैं हर वक्त उठता बैठता उसके लिए दुआ करता हूं। और जो है वो जब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्ला अलैह फौत हो गए, क्योंकि जब वो फौत हो गए तो उस आदमी ने बताया कि वो रकम अदा करने वाले हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्ला अलैह थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी में नहीं किसी को पता चलना चाहिए कि ये मैंने नेकी किया। इसको इखलास कहते हैं कि आमतौर पे इंसान अगर कुछ भी करता है तो क्या चाहता है कि फौरन जो है उसका जो है उसकी शाबाश मिल जाए कि फलाने इतना काम किया है, इतना किया है। तो प्यारी बहनों, जो रब की रजा चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो खुफिया नेकियां करते हैं, वो पोशीदा नेकियां करते हैं, वो छुप कर नेकियां करते हैं, और ऐसी नेकियों में इखलास पाया जाता है। और ये जो सहाबी थे ये क्या करते थे, ये जो थे वो रब की रजा की खातिर सुबह शाम अल्लाह को पुकारते थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की जा रही है कि आप इनकी सोहबत पर अपने आप को मुतमईन कर लीजिए, आप इनकी सोहबत स्वाले पर अपने आप को जमाए रखिए। वस्बिर नफ्सा का माल्लजीना यदऊना रब्बहुम, आप अपने दिल को उन लोगों की सोहबत पर मुतमिन रखिए, साबित कदम रखिए, जमाए रखिए, जो अल्लाह को पुकारते हैं, जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह भी और शाम भी हर वक्त। और उनका पुकारने का मकसद क्या होता है, सिर्फ अपने रब की रजा। फिर दूसरा हुक्म ये दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वला तादु ऐनाका अनहुम, और ना दौड़े आंखें तुम्हारी इनसे और ना हटे तुम्हारी आंखें इनसे, तो इनसे हरगिज अपनी निगाहें ना फेरो। इसके मानी क्या है कि ये जो गरीब है, गुलाम है, दुनिया के लिहाज से तो ये कमजोर है, ये मालो मता और दौलत जो दुनिया की है वो इनके पास नहीं है, लेकिन इनके इनके दामन में, इनकी झोली में रब की रजा है, ये रब की इबादत करते हैं, इनकी और कोई गरज नहीं है। तो आपकी आंखें जो है इनसे हटने ना पाए, ऐसा ना हो कि आप ये सोचने लगे कि जो मक्का के सरदार हैं अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो इस्लाम की रौनक बढ़ जाएगी। तो इस्लाम की रौनक जो है वो दुनिया का मालो मता नहीं है, किसी की अमारत नहीं है, किसी की कोठी या कार या उसकी कुर्सी या उसकी सरदारी या उसकी चौधराहट नहीं है, बल्कि इखलास है, अतात है। वो गरीब फकीर लोग हैं जो के जिनके दिलों में रब की रजा है, और अगर अमीर भी हो लेकिन वो अल्लाह की रजा की खातिर अगर अमल करने वाले हों तो वो इस्लाम का सरमाया है। तो ऐसे लोगों के क्या कहने। तो फरमाया कि ये जो मक्का के सरदार हैं इनके कहने पर गरीबों को अपनी महफिल से हटा ना देना, इनको अपनी महफिल से हटा ना देना। वला तादु ऐना का अनहुम, असल में यहां पे ऐनान था, ऐनान दोनों आंखें। तो अगर किसी की तरफ दोनों आंखें हों तो इसका ये मतलब है कि उनकी उसोबत हासिल है, और अगर किसी से आंखें फेर ली जाएं, हटा ली जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि जो है वो उनसे जो है वो ताल्लुक या दोस्ती जो है उसको खत्म कर लिया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन प्यारे सहाबा जो गरीब हैं, जो असाबे सुफा में से थे, मुखलिस थे, तो बहरहाल इनको आप अपने पास से ना हटाएं, इनसे अपनी नजरें ना फेरें। तुरीदु जीनत अल हयाती दुनिया, क्या तुम दुनिया की जीनत पसंद करते हो। अब ऐसा नहीं था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो दुनिया से मोहब्बत करते थे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है और मक्का के सरदारों को सुनाया जा रहा है कि मक्का के सरदारों, ये जो तुम्हारी शान शौकत है, ये जो तुम्हारी चौधराहट है, ये जो तुम्हारी सरदारी है, ये जो दुनिया में तुम्हारा ठाट बाट है, और तुम ये चाहते हो कि रसूल अल्लाह के तुम पास बैठो और गरीब मुसलमानों को रसूल अल्लाह उठा दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि इनकी अल्लाह के नजदीक और अल्लाह के रसूल के नजदीक कुछ भी कदरों कीमत नहीं है। तुमसे वो गरीब लोग ज्यादा कीमती हैं जिनके दिल में इखलास है और जो अपने रब की याद से कभी गाफिल नहीं होते। तो तुरीदु जीनत अल हयात दुनिया, तो क्या तुम दुनिया की जीनत पसंद करते हो? और मुखातिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया जा रहा है, लेकिन कहा अहले मक्का को जा रहा है। वला तुते मन अगफलना कल्बहू। अब इस आयत के जो हिस्सा है इसमें तीन बातें कही गई हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है वला तुते, और आप अतात ना करना, कहना ना मानना, मन अगफलना कल्बहू, किसी ऐसे शख्स की जिसका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है। और ये कौन था? ये उमैया बिन खल्फ था। और इसके अलावा ये कौन था जिसके बारे में जो है वो ये हुक्म दिया गया? मुफस्सरीन कहते हैं अकरा बिन हाबिस था, और आईना, और बाज जगह आता है आइनिया, आइन या नून या हा। तो बहरहाल ये मक्का के सरदार थे। कहा कि ये ऐसे लोग हैं कि जिनके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके दिल के अंदर जीनत अल हयाती दुनिया भरी हुई है, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की जीनत, दुनिया की शानो शौकत, दुनिया का ठाट बाट। तो ये दुनिया से मोहब्बत करते हैं। तो जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत हो, आखरत की मोहब्बत ना हो, अल्लाह की मोहब्बत ना हो, अल्लाह को वो दिल नहीं चाहिए। कहा इसलिए हमने इनके दिल को अपनी याद से गाफिल कर दिया है। नंबर दो, दुनिया से मोहब्बत कौन करते हैं जिनके अंदर ये बीमारी होती है? नंबर दो, वत्ताबा हवाहू, और जिन्होंने अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर ली है। कि ये क्या करते हैं कि ये अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर चलते हैं, ख्वाहिशात की पैरवी में हद से गुजर जाते हैं। इसलिए तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इन मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमान है, हमारी इससे हतक होती है, तोहीन होती है, इनको अपनी महफिल से निकालें। तो कहा कि इन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो है ये कैसे मुखलिस लोग हैं। तो वत्तबा हवाहू, इन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी को इख्तियार कर लिया है। तीसरी बात क्या है? वकाना अमरुहू फुरुता, और जिनका जिसका तरीके कार अफरातो तफरीत पर मबनी है। ये जो फारा तोए है ये जविल अजदाद में से है, ये ज्यादती करने के मानी भी देता है और कमी करने के मानी भी देता है। तो अहले मक्का जो थे, उनके जो सरदार थे, उनकी तीसरी बात जो बताई जा रही है वो ये है कि इन्होंने जुल्म किया है, इन्होंने असराफ किया है, इन्होंने अल्लाह की जो अतात है और अल्लाह की हुदूद है इनसे तजावुज किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बल्कि जो मक्का के मुतकब्बिर थे, जो मक्का के सरदार थे, वो गरीब सहाबा को हकीर समझते थे, रसूल अल्लाह से मुतालबा करते थे कि हम आपकी बात तब सुनेंगे जब आप इनको अपनी महफिल से उठा देंगे। आप देख रही हैं कि इस आयत में, इस आयत के लहजे में कितनी तेजी है, कितनी सख्त पकड़ है, लबो लहजा जो है बड़ा शदीद है, अल्लाह ताला की नाराजगी का इजहार है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप मक्का के सरदार और मालदार लोग जो हैं उनको छोड़कर जो अहले ईमान हैं, खा वो गरीब हैं, आप उनसे मोहब्बत कीजिए, आप उनसे जो है वो उनकी सोहबत को इख्तियार कीजिए। तो दरअसल यहाँ पे ईमान की जो है वो कदर की जा रही है कि ईमान लाने वाला खा वो गरीब हो खा वो अमीर हो, अल्लाह के यहाँ उसका बड़ा मकाम है और अल्लाह के रसूल के पास भी उसका बड़ा मकाम है। तो आयत नंबर 28 जो है इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो एक कायदे कुलिये के तौर पर जो बात रखी है कि अल्लाह को जो लोग पसंद हैं, जो मुखलिस हों, खा वो गरीब ही क्यों ना हो, तो कहा कि मुखलिस जो लोग हैं उनकी सोहबत इख्तियार कीजिए। ये कीमती सरमाया है, ये जो है ये दीन जो है ये दीन की पहचान है, इनके दिलों में इखलास है। वकुल हक को मेर रब्बिकुम, फरमाया कि साफ कह दो ये हक है जो तुम्हारे रब की तरफ से है, ये हक बात है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई है। इसके मानी क्या है कि ये दीने हक तुम्हारे रब की तरफ से आया है और ये सच है। फमन शा अफल योमिन, बस जिसका जी चाहे तो दीन पर ईमान ले आए, फमन शा अफल यकफुर, और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। अब यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप अपनी मुशरिक कौम जो है उसे कह दीजिए कि हम आपके साथ कोई मसालियत नहीं करेंगे, साफ साफ बता दीजिए कि ये है दीन हक अल्लाह की तरफ से आया है, जिसका जी चाहे ईमान लाए, जिसका जी चाहे इनकार करे, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई मदानत नहीं है, कोई मसालियत नहीं है, अपनी ही तुम्हारी मर्जी है। ईमान लाओगे तो फायदा हासिल होगा और इनकार करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। इन्ना आकदना लिज़्ज़ालिमीना नारा, हमने इनकार करने वालों के जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है। और आकदना जो है ऐन दाल दाल से है और इसके मानी है कि किसी चीज की तैयारी से मुतल्लिक हर छोटी बड़ी चीज जो है उसको हाजिर करना, किसी चीज की तैयारी पूरे एहतमाम से करना। तो हमने अच्छी तरह तैयारी कर ली है जालिमों के लिए। क्या चीज तैयार की है? आग, नारन, ये जहन्नुम का एक नाम है और जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जे ज्यादा है। और ये जहन्नुम की आग जो है इसकी शिद्दत का हाल क्या है? अहाता बिहिम सुरादिकुहा, अहाता जो है इसका रूट है हा वो तोए, और इसका मतलब होता है घिराव करना, घेरा करना। तो जहन्नुम की आग ने जो है वो क्या करेगी? अहाता बिहिम, वो इन इनकार करने वालों का घेरा करेगी, उन्हें घेर लेगी और उन्हें घेर चुकी है। सुरादिकुहा, ये अहम लफ्ज है, इसका रूट है सीन रा दाल काफ, रुबाई रूट वर्ड है इसका। और ये कहते हैं किसी खैमे की दीवारों को, जैसे कोई खैमा होता है ना, तो जैसे कनाते होती हैं जो किसी खैमा के गिर जो है वो लगाई जाती हैं, तो सुरादिक से मुराद यहां पर जहन्नुम की बैरूनी हुदूद है, जहां तक जहन्नुम की आग की लपटें पहुंचेगी और उसकी गर्मी का असर होगा। दोजख की चार दीवारी है इससे मुराद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं कि जहन्नुम की आग की शिद्दत यह है कि जहन्नुम की आग ने जो है वो उनकी लपटों ने इन्हें घेरे में ले लिया है। ये आखरत का जहन्नुम का इनकार करते हैं और हक से मुंह मोड़ने वाले ये समझते हैं कि हम दुनिया ही में रहेंगे, कहा कि नहीं, ये जहन्नुम की लपेट में आ चुके हैं, ये इससे बचकर कहीं निकल नहीं सकते। اللهم لا تجعلنا منهم, या अल्लाह तो हमें इन लोगों में शामिल ना करना। وَإِن يَسْتَغِيثُوا, और अगर ये जहन्नमी जो हैं ये फरियाद करें। अब आप देखिए कि यहाँ पे यस्तगीसु लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है और इसके मानी क्या है? फरियाद करना। गैन या सा जो है ये बारिश के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसके अलावा ये लफ्ज जो है ये फरियाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे किसी चीज के लिए जो है वो फरियाद करना, कोई चीज जो है उसको मांगना। वही यस्तगीसु, और अगर ये लोग जो है फरियाद करेंगे, युगासु, तो फरियाद रसी की जाएगी, तो जिस चीज को ये मांगेंगे वो इन्हें दी जाएगी। तो यहां पर जो है वो क्या चीज है जो वो मांग रहे हैं, याद रखें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, नस्ताइनु जब आपने पढ़ा था कि जब वर्ब के शुरू में नून सीन ता लग जाए तो हम मांगते हैं, या सीन ता लग जाए तो वो मांगते हैं, अलिफ सीन ता लग जाए तो मैं मांगती हूं या मैं मांगता हूं। अब यहां पर जो है वो या सीन ता लगा हुआ है ना गैन या सा के पहले, और मानी क्या है कि वो मांगते हैं, वो फरियाद करते हैं, युगासु, और इनकी फरियाद रसी की जाएगी। अब जहन्नुम में जब आग की शिद्दत होगी और वो आग के अजाब में होंगे और खोलते हुए आग और दूर दूर तक जहन्नुम की आग की लपटें जो हैं वो पहुंच रही होंगी, तो उस वक्त जहन्नमी जो हैं वो क्या करेंगे, वो पानी पानी पुकारेंगे, वो प्यास प्यास पुकारेंगे, और वो चाहेंगे कि किसी तरह इनकी प्यास को बुझाने का कोई तमाम हो जाए। वो पानी के लिए फरियाद करेंगे। अब उनकी जो है वो पानी की फरियाद जो है उसको पूरा किया जाएगा, युगासु उनकी फरियाद रसी की जाएगी। तो उनको अब क्या है कि पानी से उनकी तवाजो की जाएगी। वही असलगीसु अगर वो बारिश मांगेंगे यानी पानी मांगेंगे युगासु, तो उनको पानी दिया जाएगा। कैसा पानी? बिमाइन, बिमाइन जो है इसके मानी है कि पानी से उनकी फरियाद रसी की जाएगी। पानी कैसा होगा? कल मोहली मानित मोहल के, मीम हा लाम जो है इसके एक मानी है तेल की तलछट, इसके दूसरे मानी है लावे के। आपको पता है ना कि जमीन के वो मादे जो शिद्दत हरारत से पिघल जाते हैं उसको लावा कहा जाता है, और इसके एक मानी जो है वो पिघली हुई धात के भी किए जाते हैं, और इसके चौथे मानी जो है वो पीप और लहू के भी किए जाते हैं मोहल के। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जब वो पानी मांगेंगे तो उनको जो है वो पिघला हुआ तांबा दिया जाएगा, या उनको जो है वो लावे की तरह गर्म मादा दिया जाएगा, या कोई पिघली हुई धात दी जाएगी, या उनको वो जो जहन्नमी जहन्नुम में जल रहे होंगे उनके जख्मों से जो कच लहू बहेगा, जो पीप बह रही होगी, तो ऐसे नाफरमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वो पीने के लिए जो है वो दिया जाएगा। आप जरा तसव्वुर करें कि अगर किसी के कोई जख्म हो और उसमें से पीप बह रही हो तो उसे देखकर ही घिन आती है, उसके अंदर एक स्मेल होती है, या वैसे भी जब बहुत प्यास लगी हुई हो तो ठंडा पानी पीने को दिल चाहता है, और कुजा ये कि किसी को खौलता हुआ लावा दिया जाए, या किसी को पीप और लहू दिया जाए, या उसको जो है वो तेल की तलछट दे दी जाए। तो ये जो मीम हा लाम है इसके अंदर बुनियादी तौर पर दो बातें पाई जाती हैं, एक है सुर्खी माइल होना किसी चीज का, दूसरा है शिद्दत हरारत, गर्मी की शिद्दत। तो जो कुछ भी उनको पीने को दिया जाएगा तो एक तरफ जो है वो सुर्खी माइल होगा और दूसरी तरफ वो गर्म होगा, गर्मी की शिद्दत होगी, खा वो पीप हो, खा वो तांबा हो, खा वो तेल की तलछट हो, या वो लावा हो। यशविल वजूह, जो भून डालेगा इनके चेहरों को। तो यशवी, यहाँ पे यश वी लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसका रूट है शीन वो या, शीन वो या, और इसके मानी है कि भूनना, आग का जलाना। तो आग जो है जब किसी चीज को जो है वो जलाती है तो कैसे, जब किसी चीज को जो है वो भूना जाता है। फरमाया वो इतना तेज गर्म होगा, यानी वो जो मोहल है वो ऐसा तेज होगा, ऐसा गर्म होगा कि जो ही इनके मुंह के करीब लाया जाएगा ताकि इनको पीने को दिया जाए, तो उसके करीब आते ही इनके चेहरे जो है वो जल जाएंगे, इनके मुंह भूने भूल, इनके मुंहों को वो गर्म तेज जो है वो इनके चेहरों को भून डालेगा, यहां तक कि चेहरे की खाल उतर कर गिर पड़ेगी। और ये हदीस से भी हमें पता चलता है कि वो गर्म पानी की वजह से चेहरे की खाल जो है वो नीचे गिर पड़ेगी। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजल्ला मिनहुम, या रब्बुल इज्जत हमें इन बदकिस्मतों में शामिल ना करना। तो वो जो गर्म तेल की तलछट जैसा पानी है इनके मुंह को भून डालेगा। यशविल वजूह, वजहुन वाहिद है, वजूह इसकी जमा है, इनके चेहरों को भून डालेगा। बेसा शराब, बदतरीन पीने की चीज। बेसा जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, बेसा बहुत बुरे को कहते हैं, शराब पीने की चीज, तो बदतरीन पीने की चीज है। वसाअत मुर्तफका, और बहुत बुरी आरामगाह है मुर्तफका। अब आप देखें कि मुर्तफका जो है ये राफा काफ इसका रूट है, और इसके मानी है मुर्तफका के नरमी, रिफ्क पीछे भी आपने पढ़ा था, और रफीक को भी कहते हैं, दोस्त के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, और मिर्फक जो है ये कोहनी को भी कहते हैं। अच्छा, आमतौर पे आप देखिए आप क्या करती हैं कि कोहनी को रखती हैं ऐसे, बेशक तकिए पे रखा है या लेटी हुई है, तो कोहनी के साथ टेक लगाकर आप आराम करती हैं। तो रफीक जो होता है, जो दोस्त होता है, उसको जो जिस जो आपके लिए नरमी और मोहब्बत के जज्बात रखता है, जब आप अपनी दुख की बातें, अपनी परेशानी की बातें उसको बताती हैं, तो आपको एक आराम मिलता है, एक पीस और एक सुकून मिलता है। तो बहरहाल मुर्तफा का जो लफ्ज है, ये ज़र्फ़े मकान है, मकाम आराम, वो जगह जहां आराम हासिल किया जाए। तो अब उनके लिए आराम की जगह जो है वो जहन्नुम है। और आराम कैसा मिलेगा, जैसे कि आपने आयत नंबर 29 में पढ़ा। और ये किन लोगों के लिए है, जिन्होंने अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का और अल्लाह की किताब का जो है वो मजाक उड़ाया। अब दूसरी तरफ दूसरा किरदार बताया जा रहा है, इन लजीना अमनू वो अमिल उस्वालिहाती, बेशक वो लोग जो मान लें और नेक अमल करें, ईमान लाएं और अमले स्वाले करें, इन्ना ला नुदीउ अजर मन अहसन अमला, तो यकीनन हम नेकोकार लोगों का अजर जाया नहीं किया करते। तो ये ईमान क्या चीज है और अमले स्वाले क्या है? ईमान जो है ये वो जज्बा है, ईमान जो है ये वो अकीदा है कि जिसके मुताबिक फिर इंसान के अमल बदलने शुरू हो जाते हैं। और इस सिलसिले में मैंने अभी आपको अब्दुल्ला बिन मुबारक की एक कहानी सुनाई। मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक जो है इनका एक वाकया और सुनाती हूँ। अब्दुल्ला बिन मुबारक हदीस के मशहूर इमाम गुजरे हैं। इनका जो इल्म था, तकवा था, इनकी नेकी थी, लोग इनकी नेकी की गवाही देते थे और इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। तो अब्दुल्ला जो थे, इनके वालिद थे हजरत मुबारक, वो एक अमीर शख्स था, उसके बाग की देखभाल किया करते थे, जैसे माली का काम करते थे। जो बाग का मालिक था वो मुबारक की दयानत और लियाकत की वजह से बड़ा ही खुश था। एक दिन जो अब्दुल्ला के वालिद थे मुबारक, उनके काम से बाग का जो मालिक था, ओनर था, वो बहुत खुश हुआ और इनके वालिद मुबारक को अपने पास बुलाया और कहा, मुबारक मैं ये चाहता हूं कि कल से तुम बाग की देखभाल किसी दूसरे आदमी के सुपुर्द करो और मेरी सोहबत में मेरे साथ रहा करो। मुबारक खामोश रहे तो मालिक ने कहा कि मुबारक मैंने ये सोच समझ कर तुम्हें एजाज दिया है कि तुम्हारे पास बाग की निगरानी के लिए कई आदमी हैं, तुम जिसको चाहो मुनासिब समझो वो काम दे दो और कल से मेरी महफिल में, मेरी मजलिस में बैठा करो। जो मुबारक रहमतुल्लाह अलैह थे, इन्होंने अपना जो ऑनर था उसका शुक्रिया अदा किया और सलाम करके वापस आ गए। अब दूसरे दिन जो है वो बाग की निगरानी एक दूसरे आदमी के सुपुर्द करके वो अपने मालिक की महफिल में बैठने लगे। अब तो जो वो उनका मालिक था वो बड़ा हैरान हुआ कि मुबारक के अंदर इतनी अच्छी सिफात है, ये इतना नेक आदमी है कि वो घर के कामों के बारे में उनसे मशवरा भी लेने लगा। और एक दिन जो है उन्होंने मुबारक से ये भी कहा कि आप जो है ना अपने बाग में से, जो हमारा बाग है उसमें से कुछ अच्छा सा फल तोड़कर मेरे लिए जो है वो भेजो, पेश करो ना, मीठा हो, अच्छा हो। तो उन्होंने जो फल तोड़कर भेजा और मालिक ने जब खाया तो वो खट्टा था, वो मीठा नहीं था। तो मालिक को बड़ा गुस्सा आया कि जो है वो तुम्हें ये भी नहीं पता कि भी मीठा फल कौन सा, कौन से दरख्त का है और खट्टा कौन से दरख्त का है। तो जब इनको बुलाकर पूछा मुबारक को, तो उन्होंने वो कहने लगे कि आपने मुझे जब वहां पे माली रखा था, आपने मुझे ये तो नहीं कहा था कि मैं इस बाग का फल खा भी सकता हूँ? तो मैंने तो कभी खाया नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि इसमें से मीठा कौन सा है और इसमें से खट्टा कौन सा है। तो वो बहुत ही जो था वो मालिक खुश हुआ और वो समझ गया कि ये बहुत ही ईमानदार शख्स है। और एक दिन जो है वो कहने लगा, जो मालिक था कहने लगा कि मेरी, यानी मुबारक को अपना मालिक बहुत ही परेशान नजर आ रहा था, तो मालिक ने उससे राजदारी के लहजे में जो है वो मालिक से मुबारक ने पूछा कि क्या बात है, आप परेशान नजर आ रहे हैं। तो उसने बताया कि मेरी लड़की जवान हो गई है, उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं, बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, बहुत अमीर आदमी था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस पैगाम को कबूल करूं और किसका इनकार करूं। तो मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने गौर से अपने मालिक की बातें सुनी और फिर फरमाया, इसका फैसला करना तो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। जाहिलियत के दौर में अरब के लोग तो हसब नसब को देखते थे, यहूदी मालो दौलत पर जान देते थे, ईसाई हुस्नो जमाल पर जान छिड़कते थे, और इस्लाम की हदायत ये है कि दीनों इखलाक को, इस्लाम को तरजीह दी जाए। आप आसानी से फैसला कर सकते हैं, मुश्किल किस चीज में है, यानी आपके सामने जो है वो उसूल तो है, तो बस आप जो इस्लाम है उसको तरजीह देते हुए फैसला कर लें। और मुबारक की ये बातें सुनकर उनका मालिक बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में जो है उसने मालिक ने मुबारक की बातों की तारीफ भी की, अपनी बीवी को भी जाकर बताया और कहने लगा कि मुबारक हो तुम्हें, बीवी को कहने लगा। बीवी ने कहा कैसे, कहा कि मुझे ना दयानतदार, अक्लमंद और मुत्तकी नौजवान जो है वो अपनी बेटी के लिए मिल गया है, और मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का निकाह जो है ना मुबारक से कर दूं, जो नौकर था बाग का, जो मालिक था मुबारक ना। तो बीवी कहने लगी, अरे गुलाम से अपनी बेटी का निकाह ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके शौहर ने कहा कि जब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रहनुमाई की है कि दीन को देखा जाए, तो इसलिए जो है वो मुझे इससे अच्छा जो है वो और कोई नहीं लग रहा। तो इस तरह उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुबारक से की, और उनके यहाँ जो बेटा पैदा हुआ तो बाप ने उसका नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रखा, जो फिर हदीस का जो है वो आलिम बना। तो आप देख लें कि इस वाक्य से भी क्या पता चलता है कि ये है अमले सवाले, और अमले सवाले करना मुश्किल बहुत होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता, और उन लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता जिनकी जो है वो जिंदगी का मकसद जो है वो रब की रजा होता है। तो आप भी देखें कि जो है वो हदीसे पढ़ते भी हैं और आयतें सुनते भी हैं, कुरान पढ़ते भी हैं, टेस्ट देते भी हैं, लेकिन अमली जिंदगी में क्या ईमान और अमले सवाले जो है वो आपकी रूटीन बनता जा रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि यकीनन हम नेकोकार लोगों का अजर जाया नहीं किया करते, और अल्लाह दुनिया में भी नहीं जाया करता, और आखिरत में तो अल्लाह नेकोकार लोगों को बहुत ही बेहतरीन जजा देगा। क्या जजा देगा? बड़ी खूबसूरत मंजर कशी आयत नंबर 31 में की गई है। सूरत अल कहफ की ये आयत जो है बड़ी ही खूबसूरत आयत है, इसमें जन्नत का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तारुफ करवाया है और बताया है कि वो लोग जो जन्नत में जाएंगे तो उनके जन्नत के लिबास कैसे होंगे, उनका जेवर कैसा होगा, उनके रहने की जगह कैसी होगी, और किस शानो शौकत से जो है वो वहां पे रहेंगे। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतीहिमुल अनहार, उनके लिए जो है वो बागात हैं। ईमान और अमले सवाले रखने वालों के लिए क्या है? बागात हैं, जन्नात, जन्नतें हैं। अदनिन सदाबहार, हमेशा रहने वाली, सदाबहार हमेशा रहने वाली जो है उनके लिए जन्नतें हैं। तजरी मिन तहतीहिमुल अनहारु, जिनके नीचे जो है वो नहरें बहती हैं, यानी वो लोग जब जन्नत में होंगे और हमेशा रहने वाले बागात में होंगे तो उनके महलों के नीचे से नहरें बह रही होंगी, उनके जो पैलेस होंगे उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। तो पहली चीज क्या जन्नत की नेमत पता चली कि जन्नातु अदनिन, हमेशा रहने वाले महल या हमेशा रहने वाले बागात या सदाबहार जन्नतें। दूसरी चीज जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और बड़ा खूबसूरत मंजर है ये। तीसरी चीज युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन, कि वहां उन्हें सोने के कंगनों कंगन जो है उनको पहनाए जाएंगे। तो यहाँ पे युहल्लौना का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, युहल्लौना, इसका रूट है हा लाम या, और इसका मतलब है आरास्ता होना, आरास्ता करना। उर्दू में भी आप कहती हैं, उर्दू में भी आप ये लफ्ज इस्तेमाल करती हैं कि जरा अपना हुलिया तो दुरुस्त कर लो, अपने हुलिये को देखा, यानी जैसे अपने आप को ठीक कर लेना। और ये लफ्ज अल हलीयु, ये जेवर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जेवर के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। असाविर जो है इसका रूट है सीन वौरा, बुलंदी पर चढ़ना। सूरत का भी रूट यही है, सीन वौरा। सूरत क्या करती है, जैसे एक बाउंड्री कायम कर देती है, तो मजामीन के साथ एक अहाता कर लेती है। इसी तरह कंगन जो होता है वो क्या है कि बाजू के इर्द गिर्द होता है ना, तो दीवार के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। दीवार के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। दीवार की जैसे चार दीवारी सी बन जाती है ना, इसी तरह जो कंगन है उसकी भी बाजू के इर्द गिर्द जो है वो चार दीवारी सी बन जाती है। तो उनको जो जेवर पहनाए जाएंगे जन्नतियों को, तो वो सोने के होंगे। और वैसे भी आप देखें कि जो जेवर है ये औरत की कमजोरी है, और वो भी खास तौर पे फिर सोने का, तो उसके लिए औरतें जो हैं वो मरती हैं। और यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है कि जन्नतियों को पहनाए जाएंगे, तो इसमें जो है वो मर्द भी शामिल हैं। वैसे दुनिया में मर्दों के लिए जेवर जो है, सोना जो है, सोना जो है मर्दों के लिए ये हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो मर्द हैं इनके लिए रेशम और सोना जो है ये हराम है, बेशक कोई दुल्हा ही क्यों ना बन जाए। जैसे हमारे यहाँ रवाज है कि जब मंगनी होती है या शादी होती है तो दूल्हे को जो है वो सोने की अंगूठियां तोहफातन जो है वो दी जाती हैं, तो दुल्हा ही कोई क्यों ना हो तो सोना जो है वो जायज नहीं है। तो यहाँ पे अहले जन्नत को सोने के कंगन पहनाने का जिक्र किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, मुफस्सरीन कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि उस जमाने के जो बादशाह थे वो जेवर पहनते थे, सोने का इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की नेमतों का जब जिक्र किया तो बताया कि जन्नत में जो है ये लोग सोने का जो जेवर है इसको पहन सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अमूमन तो जेवर औरतें पहनती हैं ना, मर्दों के लिए जैसे जो है वो जेवर मर्दों ने क्या पहनना, क्योंकि वो तो मर्द हैं और उनकी मर्दानगी क्या है कि वो काम करें, वो मेहनत करें। लेकिन अब यहाँ पर जो है, चूंकि उस जमाने में बादशाहों का रिवाज था कि वो पहनते थे, तो अल्लाह ताला ने जो है वो अहले जन्नत की नेमतों का जब जिक्र किया तो कहा कि वहां पर सोने के कंगनों से उनको आरास्ता किया जाएगा। तो दुनिया में बादशाह सोने के कंगन पहनते थे, अब यहाँ पे अहले जन्नत जो हैं वो सोने के कंगन पहनेंगे, मर्द भी और औरतें भी, उनको पहनाए जाएंगे। चौथी नेमत है वयलबसूना थियाबन, और वो पहनेंगे कपड़े। थियाबन सावोबाज का रूट है, खुदरन सब्ज, तो वो सब्ज कपड़े जो है वो पहनेंगे किस चीज के, मिन सुंदुसें हुआ इस्तबरक, सुंदुस और इस्तबरक पे, ये दोनों रेशम है। जो सुंदुस है ये बारीक रेशम है और इस्तबरक जो है ये मोटा रेशम है। सुंदुस जो है ये चार हरफी इसका रूट है, यही सीन नून दाल सीन, और जो इस्तबरक है ये इसका रूट है बारा काफ, और ये मोटे रेशमी कपड़े को कहते हैं। मुफस्सरीन कहते हैं कि सुंदुस जो है ये बारीक रेशम, निहायत बारीक और नफीस रेशम, और जो इस्तबरक है ये मोटा रेशमी कपड़ा, रेशम और सोने के तारों से बना हुआ कपड़ा। तो ये दो किस्म के यहाँ पर रेशम का जिक्र किया जा रहा है, और मकसद क्या है कि जन्नत की जो नेमतें हैं उनका तारुफ। मुफस्सरीन कहते हैं कि बारीक रेशम भी होगा और उसके साथ ही मोटा रेशम भी होगा, तो नीचे के कपड़े इस्तबरक के होंगे मोटे रेशम के, और सुंदुस के कपड़े ऊपर पहने में होंगे जैसे कुर्ता वगैरह। और वैसे भी जो है वो मोटे के ऊपर बारीक कपड़ा जो है वो उसके हुसन को, उसकी शानो शौकत को, उसकी चमक को जो है वो दुबाला कर देता है। तो बहरहाल सुंदुस और इस्तबरक के सबस लिबास वो लोग पहनेंगे, और आपको इस बात का अंदाजा भी होगा कि आजकल भी जो कपड़े सिलते हैं तो उसमें मोटा कपड़ा ऊपर बारीक कपड़ा, और जो है वो उसकी शान और शौकत और उसके हुसन में जो है वो इजाफा करता है। तो बहरहाल दुनिया की जो नेमतें हैं और चीजें हैं, इनकी जन्नत की नेमतों से क्या निस्बत, लेकिन जरा सा तसव्वुर लाने के लिए अब यहाँ पे लिबास का भी जिक्र है। पांचवी नेमत है मुत्तकईन फीहा अलल अराइक, और वो ऊंची ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। मुत्तकईन, इसका रूट है वो काफ हमजा, और इसके मानी है टेक लगाना, मुत्ता के इना कि वो टेक लगाएंगे, वो तकिया लगाएंगे, तकिए लगाए हुए होंगे। फीहा इस जन्नत में, अलल अराइक तख्तों पर, अराइक जो है अरीका वाहिद है, अराइक जमा है, रूट है अलिफ रा काफ, और ये लफ्ज तख्त के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये लफ्ज जो है वो टेक लगाने वाले तख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि उनके लिए टेक लगाने वाले तख्त होंगे, ऐसे तख्ते जिस पर कपड़ा जो है वो बिछा हुआ हो, जैसे आजकल के सोफे होते हैं ना, उनको भी अरीका कहा जाता है। तो अब आप देखें कि खूबसूरत महल है, नीचे नहरें बह रही हैं और जेवर पहने हुए हैं जन्नतियों ने, खूबसूरत बेहतरीन लिबास पहना हुआ है। जैसे मेरी एक बहरीन में स्टूडेंट थी, बता रही थी कि उसका जो लिबास था शादी का, तो सोने के तारों से वो बना था, सोने के तारों से उसकी कढ़ाई हुई थी। तो सोने के तारों के बने हुए कपड़े, रेशम के तारों के बने हुए कपड़े, और भारत दुनिया के जो लिबास है उस आखिरत के लिबास से, जन्नतियों के लिबास से आपस में इनको कोई निस्बत ही नहीं है, और इतना खूबसूरत लिबास उन्होंने पहना होगा, और खास तौर पे सब्ज रंग का, बारीक रेशम, मोटा रेशम, और फिर टेक लगाकर बैठना। तो जब तरह तरह की नेमतें हों और खूबसूरत जगह हो, खूबसूरत मनाजिर हो, और उसमें इंसान टेक लगाकर बैठे, तो उसका जो लुत्फ है वो दुबाला हो जाता है, और नहरें बहती हुई नजर आ रही हो, नेमत सवाब। आपने नियाग्रा फॉल तो देखी होगी ना, दूर दूर से लोग अमेरिका और कनाडा और दुनिया से उसको देखने के लिए आते हैं, और नियाग्रा फॉल को भी जन्नत की नहरों से क्या निस्बत, और अल्लाह ताला का ये फरमाना नेमत सवाब, बेहतरीन सवाब। पीछे आपने पढ़ा था ना बेसा शराब, बेसा नेमा का ओपोजिट है, तो बेहतरीन जजा, बेहतरीन अजर, व हसुनत मुर्तफा, और आला दर्जे की जाय कयाम। व हसुनत जो है ये ऑपोजिट है साअत का, पीछे आपने आयत नंबर 29 में साअत पढ़ा था, मुर्तफा का दोनों जगह आपने पढ़ा, और मुर्तफा के मानी क्या है, टेक लगाने की जगह, आराम करने की जगह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर जो है आयत नंबर 31 में जन्नती जो है उनके लिए नेमतों का जो है उसका जिक्र किया है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों के लिए जो जन्नत तैयार की है, ना वो किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना किसी दिल में उसके बारे में तसव्वुर भी गुजरा। इतनी खूबसूरत है वो जन्नत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुत्तकी, अपने नेक और अपने पसंदीदा बंदों के लिए जो है वो तैयार कर रखी है। अब आप देखें कि एक तरफ आपने अहले मक्का के बारे में पढ़ा, जो उनके सरदार थे वो कैसे मुनकिर थे, और उनको अपनी मालो दौलत जो है उस पर कितना गुरूर था। दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाने वाले थे वो कमजोर थे, ज्यादातर लोग कमजोर थे, गरीब थे, गुलाम थे। अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है आयत नंबर 32 से जो है वो एक कहानी, एक वाकया जो है वो पेश करते हैं, और ये जो वाकया है इस वाकये में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 32 से लेकर 44 तक दो लोगों की मिसाल से जो है वो ये बात बताई है कि एक शख्स अल्लाह से डरने वाला और एक शख्स जो था वो अमीर था लेकिन मغرور था, अल्लाह का मुनकिर था, और दूसरा शख्स जो गरीब था लेकिन वो मोमिन था और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयात में जो वाकया पेश किया है इसमें इबरत दिलाई है مال و دولت جو ہے یا مال و دولت پر غرور کرنا وہ انسان کے کسی کام نہیں آتا. اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کا منکر ہو اور مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھے اور اگر اس کے پاس اللہ کی اطاعت نہ ہو, اور اگر کوئی شخص بے شک جو ہے وہ غریب ہو لیکن ہو اللہ سے محبت کرنے والا, تو اللہ کے ہاں وہ شخص جو ہے وہ بڑا ہی پسندیدہ اور بڑا ہی بہترین شخص ہے. یہ جو واقعہ ہے, یہ جو کہانی ہے, یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, تو یہ دوسری کہانی ہے. پہلی آپ اصحاب کہف کے بارے میں پڑھ چکی اور اب یہ دوسرا واقعہ ہے جو دو باغوں کا قصہ ہے. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. بڑا خوبصورت واقعہ ہے, ایک ایک آیت میں ایک ایک بات میں حکمت کے اور عبرت کے نکات جو ہیں محفوظ ہیں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, اور سنائیے ان کو مثال دو آدمیوں کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. اور ان کے سامنے آپ پیچھے وہ آیت نگاہ میں رکھیں جس میں مکہ کے جو متکبر سردار تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم غریب مسلمانوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, انہیں ہٹا دے تب ہم آپ کی بات سنیں گے. کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا جواب پیش کر رہے ہیں. وَضْرِبْ, اور مثال دیجئے اور پیش کیجئے, لَهُمْ, ان مکہ والوں کو, ان متکبروں کو, ان امیروں کو, ان سرداروں کو, مثلاً, ایک مثال, رجلین, دو آدمیوں کی. یہ دو آدمی کون تھے؟ اس سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایک رائے تو اس بارے میں یہ ہے کہ یہ دو جو تھے, دو لوگ تھے, ایک کافر تھا اور دوسرا مشرک تھا. جو مشرک تھا وہ امیر تھا, صاحب جائیداد تھا جیسا کہ قریش کے سردار, اور جو دوسرا تھا وہ توحید پرست تھا, مومن تھا, اللہ پر بھروسہ رکھنے والا تھا لیکن غریب اور مفلس تھا جیسا کہ صحابہ کرام. جیسے کہ قریش کے سرداروں نے مطالبہ کیا تھا نا کہ جو غریب غلام مفلس صحابی ہیں ان کو محفل سے نکال دیا جائے, تو اس طرح سے یعنی ایک کافر تھا اور دوسرا مشرک. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دو حقیقی بھائی تھے, باپ کی طرف سے ورثہ ملا, اور یہ جو دو بھائی تھے ایک دنیا دار تھا, اس نے جو ہے وہ ورثے سے جائیداد خریدی, خوب محنت کی تو دو باغوں کا مالک بن گیا, لیکن تھا یہ منکر. دوسرا درویش تھا, مال و دولت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, جو بھی باپ کی جائیداد سے ملا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, تھا وہ نیک دوسرا بھائی. تیسری رائے یہ ہے کہ یہ دو آدمی جو تھے نا یہ دونوں ہمسائے تھے, ایک مومن تھا اور دوسرا کافر, یعنی دونوں کے اندر جو تھا وہ بڑا فرق پایا جاتا تھا. تو بہرحال دو کردار یہاں پہ پیش کیے جا رہے ہیں, ایک کردار کی مثال صحابہ سے ملتی ہے اور دوسرا جو ہے کردار جو ہے وہ کافروں سے, انکار کرنے والوں سے ملتا ہے. تو کہا کہ رجلینی, دو آدمی, جعلنا لأحدہما, ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے دیا, جنتین, دو باغ, ان میں سے ایک کو ہم نے جو ہے وہ دو باغ دیے تھے. جعلنا, ہم نے دیے, لأحدہما, ان دونوں میں سے ایک کو. احد جو ہے وہ ایک کو کہتے ہیں نا, اور ہما اصل میں یہ ہما تھا, یہ جو لام آیا نا اس کی وجہ سے ہا کے نیچے زیر آ گئی. لأحدہما, ان دونوں میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے دیے جنتین, دو باغ. وہ باغ کس چیز کے تھے؟ من عناب, انگوروں کے. اللہ رب العزت نے ان میں سے ایک کو انگور کے دو باغ دیے. وحففناہما, اور ہا فا فا اس کے معنی ہوتے ہیں گھیر لینا, گھیراؤ کرنا, گھیر لینا. اور جیسے وہ جو دو انگوروں کے باغ تھے ان کے گردا گرد. وحففناہما, اور ان دونوں انگوروں کے باغوں کو گھیر لیا تھا, بنخل, کھجوروں کے درختوں نے. اب ذرا تصور کریں کہ منظر کتنا خوبصورت ہے کہ دو باغات ہیں, और अरबों के यहाँ बेहतरीन बाग का तस्वुर ये था कि अंगूरों का बाग हो और किनारे किनारे खजूरों के दरख्त हो जो फल भी दे और बाग की खूबसूरती में इजाफा भी करें। और जब लू चलती है अरब में, अरब का इलाका बड़ा गर्म इलाका है, जब गर्म लू चलती है तो वो जो खजूरों के दरख्त होते हैं ना जो बाग के इर्द गिर्द लगे हुए होते हैं तो वो बाग की हिफाजत करते हैं। तो यहाँ पे उसी का जिक्र है कि अंगूरों के दो बाग वहफफ ना हुमा, और उन दोनों बागों को घेर रखा था, उन दोनों बागों के किनारे किनारे बेनखलिन खजूरों के दरख्त थे। तीसरी बात क्या है, वजअलना बैनहुमा ज़रअ, और इन दोनों बागों के दरमियान में जरन खेती थी। और बेहतरीन बाग का अरबों के यहाँ क्या तसव्वुर है कि बाग के अंदर छोटे छोटे जो है ना वो जमीन के कतरे हों जिनमें मौसम के लिहाज से जरूरी चीजें जो है वो बोई जा सके। किल्तल जन्नतैनी, फरमाया कि दोनों बाग, आपने पीछे पढ़ा था ना किला जो है ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुजक्कर के लिए किला आता है। आपने सूरत बनी इसराइल में पढ़ा था ना कि वालदैन दोनों में से एक या दोनों मिले और वो हों बूढ़े, तो बूढ़े हों तो उनकी उनके खिदमत करनी है और उफ नहीं कहना, तो वहां पे किला था, किला हुमा, और दोनों के लिए आता है ना किला। और किलता जो है ये किला का मुअन्नस है, यानी दो मुअन्नस के लिए किलता का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। तो फरमाया कि किलतल जन्नत इन्हें, और जन्नत बाग जो है ना ये मुअन्नस है, तो इन दोनों बाग, ये दोनों बाग जो थे, आतत उकुलहा, आतत लाए उकल उकुलहा फल अपना। तो अब आप देखें कि एक बाग की बात नहीं हो रही, दो दो बागों की बात हो रही है, यानी जिस शख्स के पास एक नहीं दो दो बाग हो, और बाग भी कैसे, आतत उकुलहा, खूब फल वाले, कि वो खूब फले फूले, वो अपना फल लाए, यानी खूब उसको फल लगा, वलम तज़लिम मिन्हु शैया, और अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने जरा सी भी कसर ना छोड़ी, वलम तज़लिम, ज़ोएला मीम का मतलब होता है कमी करना, जुल्म करना, और ये जो बाग थे कोई भी उनके अंदर कमी नहीं थी, यानी पैदावार के अंदर किसी किस्म की कमी नहीं थी, खूब खूब उनके अंदर जो था ना फल आया, खूब उन्होंने फल दिया। वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, और जारी कर दी हमने दरमियान दोनों बागों के एक नहर। अब आप देखें कि अरबों के यहां जो एक बेहतरीन बाग है, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है, और इसमें पहली चीज क्या है कि अंगूरों का, अंगूरों के दो बाग, दूसरी चीज किनारे किनारे खजूरों के दरख्त, तीसरी चीज के जमीन का किता अंदर जहां पे वो अपनी जरूरत के मुताबिक कई चीजें लगा लेते थे, वजअलना बैनहुमा ज़रअ, चौथी चीज वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, कि उसके बीच में जो थी एक नहर जारी कर दी। तो बाग के अंदर जब नहर होती है ना तो बाग के लिए शादाबी की, जरखेजी की, और उसके फल की जो है वो जमानत बन जाती है, खूब फल जो है बाग में आता है क्योंकि मौके की मुनासिबत से मालिक जो है उसको पानी देता है, नहरी नहर अंदर है बाग के। तो वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, तो खिलाल जो है पीछे भी आप पढ़ चुकी हैं, ये लफ्ज दरमियान के लिए इस्तेमाल होता है, खा लाम लाम, तो दोनों बागों के दरमियान में जो थी वो एक नहर थी, और इसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों बाग खूब फल लाए, खूब फले फूले, और जरा भी इनके अंदर कमी ना हुई। अब ये इतना फल देखकर वकाना लहू समरुन, जब उसे खूब जो है वो समर मिला, यानी था उसके लिए बहुत सा फल, तो जो बाग का माली था जिसके पास ये बाग थे और जिसको बागों की पैदावार मिल रही थी, वकाना लहू समरुन, जिसके लिए खूब ये नफा था, फकाल साहिब ही, तो अपने साथी से कहने लगा, वह वह युहावे रहू, और वो उसे जो है वो गुफ्तगू कर रहा था। युहावे रहू जो है इसका रूट है हा वो रा, इसके मानी होता है पलटना, और मुहावरा भी इसी से है, जिसमें एक बंदा कोई बात करता है तो दूसरा बंदा जो है उसकी बात का जवाब देता है। सवाल जवाब करना, तबादला गुफ्तगू, बातों बातों में कुछ कहना, मुहावरा लफ्ज तो आपको आता है ना। तो अब क्या हुआ कि ये सारा फल इतने खूबसूरत, इतने जरखेज, इतने बेहतरीन बाग जो थे वो पाकर, जिसके जो बाग का मालिक था ना, इन दोनों बागों का जो मालिक था, वो अपने साथी से कहने लगा, वह हुआ युहावे रहू। वह हुआ युहावे रहू के मानी क्या है? और वो जो है उससे कह रहा था, उससे बातें करने लगा, और बातें भी क्या करने लगा, कहने लगा, अना अक्सरु मिनका मालं व अअज्जु नफरा, कि मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूं। अक्सरु अफअलु के वजन पर है, सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके मानी क्या है अक्सरु के ज्यादा रखता हूं, मिनका तुझसे, तो मेरे पास तुझसे ज्यादा है क्या चीज, मालन माल यानी दौलत मेरे पास तुझसे ज्यादा है। वह अज्जू, अज्जू जो है ये भी अफलू के वजन पर है, और मैं ज्यादा इज्जत रखता हूं। उनके यहाँ क्या रिवाज था कि जिसके पास दौलत ज्यादा हो उसके पास इज्जत ज्यादा है, तो कहने लगा कि मालो दौलत में और इज्जत में मैं तुमसे बढ़कर हूं। नफारा, नफारा जो है ये औलाद को कहते हैं, नौकर चाकर, नौकर चाकर को कहते हैं, नफरी आदमी और लोगों को कहते हैं। तो वो कहने लगा कि मेरे पास नौकर भी ज्यादा है, जो जहां दौलत होती है वहां पे नौकर तो आ जाते हैं ना, अब गरीब लोग तो नौकर चाकर नहीं रख सकते, और दूसरी बात क्या है कि मेरे पास औलाद ज्यादा है, तो औलाद में नौकर चाकर में जो है वो मैं तुमसे बढ़कर हूं। तो अब वो क्या करने लगा कि दौलत देखकर, अपने बागों का फल देखकर, वो शख्स जो है वो गुरूर में मुब्तिला हो गया। वदखला जन्नतहू, और वो अपनी जन्नत में दाखिल हुआ, और उसकी जन्नत क्या थी, उसका बाग, वो अपने बाग में दाखिल हुआ, यानी जिन बागों को वो जन्नत समझ रहा था कि इन बागों की वजह से मुझे शान शौकत मिली हुई है, वो उसमें दाखिल हुआ। वह हुआ जालिमुल नफ्से, और वो अपने नफ्स के हक में जालिम बनकर कहने लगा, कि जब वो अपने बाग में पहुंचा तो उसके साथ ही जो है उसने क्या किया, ये बाग की जाहिरी शान और शौकत, और बाग का जो फल था और जो बाग की बहार थी, उन सारी चीजों को देखकर वो शख्स कहने लगा, वह हुआ जालिमुल नफ्से ही, और वो अपने नफ्स के हक में जालिम बन गया, और वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा था, जो बातें कर रहा था, क्या उसने जुल्म किया, कालमा अजुन्नु अन तबीदा हाजे ही अबादा। आप जरा तसव्वुर करें कि सरसब्ज बाग में जो फलों से फूलों से लदा हुआ हो, और कोई शख्स जो है वो अपनी दौलत पर गुरूर करता हुआ, अकड़ता हुआ अपने बाग में दाखिल हो, और बोले कि मा अजुन्नु, मैं नहीं गुमान करता, अन तबीदा कि ये जो है ये तबाह होगा, हाजे ही अबादा, ये बाग कभी तबाह भी होगा मैं गुमान नहीं करता, मैं यकीन नहीं करता। तबीदा जो है इसका रूट है बा या दाल, बा या दाल, इसके मानी होते हैं बियाबान में किसी चीज का उजड़ जाना, तबाह हो जाना, मुतफरक होना, परागंदा होना। अब आप देखें कि बियाबान जो होता है वहां तो पहले ही तबाही हर तरफ मची हुई होती है, और अगर वहां कोई चीज जो है वो हिलाक हो जाए, तबाह हो जाए, खराब हो जाए, तो इसके मानी क्या है कि ये लफ्ज तबीदा का मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहार देकर, शानो शौकत देकर, फलों की कसरत देकर वो कहने लगा, मा अजुन्नु अन तबीदा हाजे ही अबदा, मैं नहीं समझता कि ये दौलत कभी फना हो जाएगी, ये मेरा बाग कभी उजड़ेगा, कभी इस पर खिजा हो आएगी, मैं इस पर यकीन नहीं रखता। वमा अजुन्नु साअता क़ाइमा, और कहने लगा मुझे ये भी उम्मीद नहीं है, वमा अजुन्नु, اور میں خیال نہیں کرتا، الساعہ یہ قیامت کا نام ہے، کہ قیامت کی گھڑی قائمتن قائم ہوگی. اب دوسرا اس نے دعویٰ یہ کیا کہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ کبھی قیامت آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا منکر تھا، وہ قیامت کا منکر تھا. وہ کہنے لگا کہ قیامت بھی کوئی نہیں آنی، قائم ہی نہیں ہوگی. اچھا پھر ساتھ ہی کہنے لگا وَلَا اِرُّدِتُ، اور اگر میں لٹایا گیا، یعنی بالفرض اگر قیامت آ بھی گئی، بالفرض اگر قیامت آ بھی گئی اور میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا، وَلَا اِرِّدُ، یعنی جیسے کسی چیز کو لٹانا، رد کر دینا، تو اگر میں جو ہے وہ لٹایا گیا الی ربی، اپنے رب کے پاس، اگر مجھے کبھی اپنے رب کے پاس پلٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور اس باغ سے زیادہ شاندار جگہ مجھے وہاں پہ ملے گی. تو پہلی بات یہ تھی کہ دوسری زندگی کوئی نہیں، قیامت کوئی نہیں آنی، اور اگر قیامت آئے گی تو وہاں پہ میں اس دنیا سے بھی زیادہ خوشحال رہوں گا، کیونکہ یہاں میرا خوشحال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا چہیتا ہوں. تو اس لیے وہاں پر بھی جو ہے اللہ رب العزت مجھے بڑے خوبصورت باغ دے گا اور میرا مقام بہت ہی اعلیٰ ہوگا. جو دنیا میں مجھے ملا نا، اس سے زیادہ اچھی نعمتیں مجھے وہاں پر ملیں گی، کیونکہ دنیا میں بہترین سب کچھ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں دنیا میں اللہ کا جو ہے وہ پسندیدہ ہوں. تو آپ سوچیں کہ وہ دو بھائی ہیں، یا وہ دو پڑوسی ہیں، یا جو ہے وہ دو کوئی آدمی ہے، ایک کافر مشرک ہے، ایک ایماندار ہے. تو جو کافر ہے اس کے پاس اتنے خوبصورت باغ اور اتنے پھل اور اتنی چیزیں، تو وہ اپنے جو دوسرا شخص ہے جو قیامت پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے باغ میں لے کر جاتا ہے اور اکڑتا ہوا اور فخر کرتا ہوا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے اپنے کفر کا اور اپنے تکبر کا اظہار کرتا ہے، اپنے باغ کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اپنی شان و شوکت جو ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا قیامت آئے گی، میں نہیں مانتا کوئی حساب کتاب ہوگا، اور اگر بالفرض ہو بھی گیا تو مجھے اس دنیا سے بھی اچھا جو ہے وہاں پہ ملے گا. لَأَجِدَنَّ، یہاں پہ دو تاکید جمع ہو گئی ہیں، ایک ہے لام، لام جو ہے وہ لام تاکید ہے، اور دوسرا نون جو ہے یہ بھی تاکید کا ہے کہ لَأَجِدَنَّ، تو میں ضرور با ضرور پاؤں گا، خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبَ، کہ اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ جو ہے میں وہاں پہ پاؤں گا. اور منقلبہ کیا ہوتا ہے؟ قاف لام با، قلب جو ہے یہ تبدیل ہونا، پلٹنا، لوٹنا، انقلاب بھی اسی سے ہے، قلب بھی اسی سے ہے کہ دل کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، خون کیا کرتا ہے، پلٹتا رہتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے. تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں ضرور اس سے زیادہ بہترین جگہ جو ہے مجھے وہاں پہ ملے گی. اب جو اس کا وہ ساتھی ہوتا ہے نا دوسرا، قال لہ صاحبہ، تو اس کا ساتھی اسے کہنے لگا، وہ یحاورہ، اور اس کا ساتھی جو تھا وہ اسے باتیں کر رہا تھا. تو اس کا دوست جو ہے، اس کے ساتھی نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، اکفرتا باللذی، کیا تو کفر کرتا ہے اس سے، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا، باللذی، وہ ذات جس نے خلق کا پیدا کیا تجھے، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفت، اور پھر نطفے سے، ثم سوا کا، پھر تجھے جو ہے وہ پورا بنایا، تیرا نک سکھ، تیرا نک سکھ درست کیا، تجھے معتدل بنایا، رجولا، مکمل ایک مرد. اب یہاں پہ انسان کی پیدائش کے تین مرحلے پیش کیے گئے ہیں. اس نے دلائل سے کہا کہ تو کچھ بھی نہ تھا، مٹی تھا، مٹی بھی کیا تھی، حقیر سا نطفہ تھا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے جیتا جاگتا ایک خوبصورت انسان جو ہے، صحیح سالم آدمی بنا کر تجھے کھڑا کر دیا، اور تیری حقیقت یہ، اور تیرا، تیری روش اور تیرا عمل یہ کہ تو اللہ کا انکار کرے اور تو قیامت کا انکار کرے، اور تو کرتا ہے تو کرتا رہے، یعنی تو اللہ اور آخرت کا انکار کرتا ہے تو مجھے تیری کیا پرواہ، لیکن میں، هو الله ربي, وہ اللہ میرا پروردگار ہے. ولا اشرک بربی احدا, اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اس نے اپنی توحید کا اقرار کیا, اس نے اسلام جو عقیدہ تھا اس کا اظہار کیا. یہ آدمی غریب تھا لیکن نیک تھا. تو اس نے کیا کہا کہ تو انکار کرتا ہے تو انکار کرتا رہے, لیکن میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, اللہ میرا رب ہے, اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اس نے اور بات بتائی, ولولا اذ دخلتا, اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو داخل ہوا جنتا کا اپنے باغ میں, کہ جب تو اپنی جنت میں اپنے باغ میں داخل ہوا تھا, تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ قلت ما شاء اللہ, کہ تو کہتا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ لا قوت الا باللہ, یعنی جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا اور میرا کسی چیز پر کوئی زور نہیں ہے. تو اس نے اس کو سمجھایا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تھا تو باغ کی ترقی کے لیے, باغ کی حفاظت کے لیے, اس کے پھل اور پھول کے لیے ضروری تھا کہ جب تو باغ میں داخل ہوتا تو یہ ساری بہترین چیزیں دیکھنے کے بعد تو اللہ کی یوں تعریف کرتا کہ ما شاء اللہ, کہ جو اللہ نے چاہا, لا قوت الا باللہ, اور یہ جو کچھ بھی میرا باغ ہے یہ اللہ کی قدرت سے ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو اتنا خوبصورت باغ اور اس کے پھل اور اس کی رونقیں مجھے مل نہیں سکتی تھی. تو تم نے ایسا کلمہ شکر کیوں نہ بولا, تم نے نہ شکری کیوں کی, تو کیوں بھول گیا کہ ہر قوت کا سر چشمہ اللہ ہے, اور اللہ چاہے گا تو اس کو آباد رکھے گا, اور اگر اللہ چاہے گا تو اس کو برباد کر دے گا. تو باغ کے حسن و جمال کو دیکھ کر تو نے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیوں نہ کیا, انہیں کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو اس سے ہمارے لیے عمل کے لیے کیا اصول نکلتا ہے, اگر آپ گاڑی اچھی چلاتی ہیں, اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور اللہ آپ کے ہاتھ میں شفا دیتا ہے, اگر آپ کھانا اچھا پکاتی ہیں, اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی اور آپ کے بچے نیک نکل آئے. ہر والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ آزمائے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بچے بہت اچھے نکل آتے ہیں. تو جب بھی کوئی چیز اچھی دیکھیں, کھانا اچھا پکا ہے, ڈرائیونگ پہلا ہی ٹیسٹ آپ نے دیا, آپ نے روڈ ٹیسٹ اور آپ کو لائسنس مل گیا, کھانا بہت اچھا ہے اور بچے بہت اچھے ہیں, پڑھائی میں آپ بہت اچھی ہیں, بچوں کی تربیت میں, یا زندگی کے جو بھی مراحل ہیں, یہ آپ کی جاب ہے اس میں آپ کو ترقی مل رہی ہے, جس بھی لحاظ سے دیکھیں آپ, اور کچھ نہیں, آپ صحت مند رہتی ہیں, آپ کو آپ بیمار نہیں ہوتی, یا آپ کے بچے صحت مند رہتے ہیں ہمیشہ, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کی ذات کو جاتا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے کوٹ جیکٹ اچھی پہن لی تھی اور آپ نے جو ہے وہ انجیکشن لگوایا ہوا ہے, دوائی لیتی ہیں, یہ لیتی ہیں, وہ لیتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی توفیق ہے ساری احتیاطوں کے بعد. پھر اس نے فرمایا ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا, فرمایا کہ اگر دیکھتا تو انا اقل, کہ میں جو ہوں اقل قلیل سے ہے, قاف لام لام, کہ میں جو ہوں وہ کمتر ہوں. اصل میں ان طرح نی تھا, نون کے بعد یا تھا جو گر چکا ہے, کہ اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو انا اقل من کا, کہ میں تجھ سے کمتر ہوں, کہ میرے پاس تھوڑا ہے, مالن مال و دولت, وولدا اور اولاد, کہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھ رہا ہے, فاسا پس قریب ہے, اسا کا لفظ شاید کے معنی بھی دیتا ہے اور قریب کے بھی, فاسا پس شاید ربی میرا رب, این یوتیانی, کہ وہ دے دے مجھ کو, عطا کر دے مجھ کو, خیرم من جنتی کا, تیری جنت سے بہتر, تیرے باغ سے بہتر مجھے دے دے, ویرسل علیہا حسبانن, اور تیرے باغ پر بھیج دے حسبانن عذاب. حسبانن جو ہے یہ غفران کے وزن پر ہے, ایسا عذاب جو کسی کے کرتوتوں کے نتیجے میں آئے, جیسے کسی کے عمل ہونا تو اس کے مطابق اس کے حساب سے کسی پر جو ہے وہ عذاب آ جائے, تو اس کو حسبان کہا جاتا ہے. تو فرمایا कि तुझे जो गुरूर है अल्लाह की दीवी दौलत को तू अपनी मकबूलियत की अलामत समझ रहा है, और मेरे पास दौलत नहीं है तू मुझको गैर मकबूल समझ रहा है। तो ये जो तुझे धोखा हो गया है कि तू अमीर है और तू समझता है कि तू अल्लाह का पसंदीदा है, तो मत भूल इस बात को कि अगर अल्लाह चाहे तो तेरे बाग से अच्छा बाग मुझे दे दे दुनिया ही में या फिर आखरत में, और तेरे बाग पर आसमान से कोई अजाब भेज दे। मिनस समाई आसमान से फतुस बिहा, बस हो जाए। स्वाद बा हा जो है इसके मानी होते हैं हालत का तब्दील हो जाना। जैसे अगर कोई शख्स सुबह के वक्त अमीर था, शाम हो तो वो गरीब हो जाए। कोई शख्स जैसे बाग सुबह के वक्त जरखेज था, फलों से लदा हुआ था, शाम हुई या रात हुई आंधी आई और वो चटियल मैदान बन गया। तो याद रखें कि ये लफ्ज जो है इसके मानी क्या है, इसके मानी है कि हालत का तब्दील हो जाना। फतुस बिहा, फस वो तेरा बाग हो जाए सईदन मट्टी का मैदान। स्वाद ऐन दाल इसका रूट है, और इसके मानी है वैसे चढ़ाई चढ़ने की जगह को कहते हैं, बुलंदी के लिए भी सऊद ये लफ्ज इस्तेमाल होता है और मट्टी के मैदान को भी कहते हैं। तो फिर क्या हो कि तेरा ये फलों फूलों से लदा हुआ बाग जो है ये बन जाए सईदन मैदान जलाकन। जलाकन जो लफ्ज है इसका रूट है जे लाम काफ, और इसके मानी होते हैं ऐसा साफ कि जिस पर पैर फिसलने लगे, यानी किसी चीज का चटियल मैदान बन जाना, इतना साफ होना कि अगर कोई इस पर पांव रखे तो फिसलने लगे। तो तेरा ये बाग जो कि फूलों फलों से लदा हुआ है, इसमें अंगूर हैं, इसमें खजूरें हैं, इसमें अंदर खेती है और हर तरफ हरियाली है, तो ऐसा हो सकता है कि जब अजाब आए तो ये चटियल साफ मैदान बनकर रह जाए। और युस बिहा यह हो जाए मा उहा इसका पानी गौरन। गौरन जो है गैन वोरा इसका रूट है, और इसके मानी है खुश्क होना, जमीन के अंदर पानी का उतर जाना, बहुत ज्यादा जमीन के नीचे पानी का हो जाना। नशेबी जमीन को भी अलगौर कहा जाता है। तो पानी जब जमीन के बिल्कुल अंदर उतर जाए तो उसके लिए गौरन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखें कि आप भी बहुत सी बातों पर कहती हैं कि मैं गौर कर रही हूं। गौर का मतलब क्या है कि आप किसी चीज की गहराई में है, अंदर जाकर उसके बारे में सोच रही है ना, तो आप कहती हैं कि गौर व फिक्र, तो इस तरह भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो गौरन क्या है, पानी जमीन में नीचे उतर गया, गारल मा उ गौरा। तो उसके पास क्या थी, यानी वो इसीलिए तो मगरूर हो रहा था कि वह फज्जर ना खिलालहुमा नहरा, के बागों के अंदर नहर जारी थी। तो अब ये उसको याद दिला रहा है कि अगर अल्लाह चाहे तो हो जाए तुम्हारे बागों की नहर का पानी गौरन, जमीन के नीचे चला जाए। फलन तस्तती लहू तलबा, और तू फिर किसी तरह उसको तलब ना कर सके और तू किसी तरह उस पानी को निकाल ना सके। तो अगर पानी जमीन में गायब हो जाए, जमीन के अंदर चला जाए, तो कोई है जो उसको जो है वो निकाल कर ले आए, कोई भी नहीं है। वह ओहीता बेसमा रही फरमाया, फिर हुआ क्या, वह ओहीता जो है इसके मानी है और घेर लिया गया। हा वो तो ये रूट है, वह ओहीता और घेर लिया गया, बेसमा रही फल इसके, यानी इसके बाग के जो फल थे जो मेवे थे उनको घेर लिया गया। आपने पीछे जो है वो पढ़ा था ना कि उसका जो बाग था वो फलों फूलों से लदा हुआ था। किल्तल जन्नतैनी आतत उकूलहा, ये आपने पढ़ा था ना। अब क्या हुआ, अब ये उसको समझा कर हटा है, और फिर हुआ क्या कि अजाब आया, एक आंधी आई, तूफान आया, वह उहीता बे समा रही, और इसके बाग के जो फल थे उनको घेर लिया गया। तो असबहा पस वो हो गया, अब उसकी हालत तब्दील हो गई। तो असबहा पस वो हो गया, और बात कहते हैं कि सुबह के वक्त उसके बाग की ये हालत हो गई, उसका ये हाल हो गया। युकल्लिबु कफ्फैही के वो जो है वो मलने लगा, कफ्फैही अपनी हथेलियों को। काफ लाम बा इसके मानी क्या होते हैं, मलना, लौट पौट करना, लौटना। तो युकल्लिबु वो मल रहा था। कफ ही कफ का फा फा ये हथेली के लिए इस्तेमाल होता है। तो और यहाँ पे कफ़ेन था, दो हथेलियां। नून गिर चुका है और ग्रामर के कायदे के मुताबिक ये नून कभी गिर जाता है ना। पहले उसने क्या कहा था, मा अजुन्नु अन तबीदा हाजही अबादा। फलों को लदे हुए जो बाग के दरख्त थे, फलों से लदे हुए, उसने कहा था मैं सोच भी नहीं सकता कि कभी ये तबाह होगा। जो मगरूर और मुतकब्बिर लोग होते हैं वो यही समझते हैं कि कभी दौलत जो उनके घर की बांधी है उनके पास से नहीं जा सकती। जो ऐशो इशरत उनको मयस्सर है कोई उसे छीन नहीं सकता। और वो इसके अंदर ऐसे मुब्तिला होते हैं कि फिर वो खो जाते हैं, गाफिल होते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। और कुदरत की एक हरकत, कुदरत की एक जुम्बिश अगर इंतकाम लेने पर आ जाए तो वो सारे महल को जमीन बोस कर देती है, वो सारे बागों को चटियल मैदान बना देती है। और उस वक्त इंसान को नजर आता है जब पांव के नीचे से जो है वो जमीन निकल चुकी होती है। अब पछताए क्या हौत जब चिड़ियां चुग गई खेत, वही ताबे समर ही। और उसका फल जो था सारा मारा गया, बर्बाद हो गया, उसको अल्लाह की तरफ से अजाब ने घेर लिया। फअसबहा युकल्लिबु कफ्फैही, और वो मलने लगा अपनी दोनों हथेलियों को, अफसोस से अपनी हथेलियों को मलने लगा। किस चीज का अफसोस, अला मा अनफका फीहा, जो खर्च किया था उसने अपने बाग पर। क्योंकि उस बाग के लिए उसने बड़े पैसे खर्च किए थे, बड़ी मेहनत की थी, और उसने जो है बड़ी बाग पर मेहनत की थी। तो बाग की हरियाली के लिए जो कुछ उसने खर्च किया था, जब उसने उसको बर्बाद होता हुआ देखा तो अपने हाथों को मलने लगा। वहिया खावियतुन, वहिया खावियतुन, और वो गिरा हुआ था। इसके माने क्या है कि वो उसका पूरा बाग जो था, उसकी जो खजूरें थी, जो दरख्त था, जो टहनियां थी, वो सारी नीचे गिरी हुई थी। वहिया खावियतुन, वो सब चीजें क्या थी कि वो उल्टी पड़ी हुई थी, गिरी हुई थी। अला उरूशिहा, अपनी छतरियों पर, कि वो जैसे होता है ना टहनिया और चीजें लगाकर बेलों को ऊपर चढ़ाया हुआ हो, अब वो सब ऊंधी हुई हुई थी। अर्श जो है वो छत के लिए भी इस्तेमाल होता है और छतरी के लिए भी इस्तेमाल होता है जिस पर उसने अपनी बेलें वगैरह बाग की चढ़ाई हुई थी। अब वो सारी जो बेलें थी और जो भी बाग की फल वगैरह था, टहनियां थी, वो छतरियों पर गिर कर रह गया था। वह यकूलू, और वो कहने लगा, या लैतनी लम उशरिक बि रब्बी अहदा, काश मैंने अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक ना बनाया होता। अब वो अपना मुहासबा करने लगा और अफसोस करने लगा और कहने लगा कि काश कि मैंने अपने रब के साथ शिर्क ना किया होता। फलम तकुल लहू फियतुन, ना हुआ उसके लिए कोई जमात। फलम तकुन, और ना हुई लहू उसके लिए फियतुन कोई जमात, यंसुरूनहू कि मददगार होती इसकी, मिन दूनिल्लाहि सवाए अल्लाह के। तो अल्लाह को छोड़कर अब कोई जत्था और जमात ऐसी नहीं थी कि उसकी मदद करती। फमा काना मुंतसिरा, और ना ही कोई था बदला लेने के काबिल। मुंतसिरा जो है ये इसके मानी है कि और कोई भी नहीं था जो उसके बाग की इस हालत का इंतकाम लेता। और यहां पर आप देखें आयत नंबर 34 को आप सामने रखें, उसने क्या कहा था, उसने अपने साथी से जो बाग में लेकर गया था उसको दिखा रहा था, तो कह रहा था कि अना अक्सरु मिनका मालं व अअज्जु नफरा, कि मैं माल और औलाद में तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, ज्यादा मेरे पास है सब कुछ। अब उसकी, उसका माल, उसकी औलाद, उसकी नौकर चाकर, कोई भी तो उसकी मदद करने को ना आए, क्योंकि अल्लाह के अजाब की जब चोट पड़ती है तो कोई भी फिर मदद नहीं करता। हुनालिका, उसी वक्त उसको ये बात पता चल गई, अल वलायतु लिल्लाहिल हक, के वलायत जो है वो अल्लाह ही के लिए है। वलायत जो है इसके मानी क्या है कि हुक्म और इख्तियार जो है वो अल्लाह के लिए है। तो वलायत लव जो है वो लाम या जो है इसका रूट है और इसके मानी है कि जो भी इख्तियार है जो भी कुदरत है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह के पास है। अल्लाह कौन? जो बरहक है। हुआ खैरुन, हुआ खैरुन वही बेहतर है, सवाबन सवाब देने में, व खैरुन उकबा और बेहतर है बदला देने में। तो जो भी जो है वो इख्तियार है या कुदरत है वो अल्लाह का हक है। याद रखें कि वलायत वो पर फतह हो जबर हो तो इसके मानी नुसरत के होते हैं, अगर वो के नीचे जेर हो तो इसके मानी जो है वो हुक्म के होते हैं, इख्तियार के होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर वलायत का लफ्ज जो है ये इक्तदार के लिए, इख्तियार के लिए जो है वो इस्तेमाल हुआ है कि इख्तियार का जो हक है ये अल्लाह ही का है। हुआ खैरुन सवाबन, इनाम वही बेहतर है जो अल्लाह दे, व खैरुन उकबा और अंजाम वही बेहतर है जो के अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो दिखाए। तो यहां से जो है वो क्या बात पता चलती है कि अल्लाह की कुदरत के करश्मे देखें कि अल्लाह ताला को जो है फखर और गुरूर पसंद नहीं है। आयत नंबर 27 से जो आज का सबक शुरू हुआ तो उसमें क्या बात हमारे सामने आई थी कि अहले मक्का जो थे वो गुरूर में मुब्तिला थे, जो मक्का के सरदार थे वो अपने आप को बड़ा समझ रहे थे। तो शुरू में भी बताया कि बेहतरीन लोग वो हैं जो कि अल्लाह पर ईमान लाते हैं, जो अल्लाह की अतात करते हैं, और वो लोग जो कि दिन रात अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारते हैं। और ये दो जो बाग वालों की मिसाल है इससे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही बात बताई है कि कुफर शिर्क करने वाले जो है वो अल्लाह के यहाँ कामयाब लोग नहीं हैं। तो कौन लोग कामयाब हैं? कि जिनके अंदर आजी और इनकसारी होती है और जो कुछ भी उनको मुयस्सर होता है तो वो घुमंड में मुब्तला नहीं होते। और आप देख रही हैं कि इस शख्स के किरदार में क्या था कि बाग की जरखेजी और फलों फूलों को देखकर वो कहने लगा कि ये मेरी काबिलियत और सलाहियत का करश्मा है, ये मेरी जाती हक है। उसको ये सारा कुछ अल्लाह का फजल समझना चाहिए था, उसको अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए था, लेकिन जब उसने जो है वो घुमंड किया, तकबर का इजहार किया, तो जो मगरूर होते हैं उनकी आंख पर पर्दा पड़ जाता है और फिर हुस्बान यानी अल्लाह की पकड़ तो आती है ना। हुस्बान जो आयत नंबर 40 में लफ्ज है, मुफसरीन कहते हैं कि कड़क ओले ये अजाब उसके बाग पर आया जिसने उसके बाग को चटियल मैदान बना दिया, यक लख्त उसको सारे सब्जे से महरूम कर दिया। तो आइए अल्लाह की अता करदा नेमते जो हैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने अंदर आजज़ी इनकसारी पैदा करें, डरें इस बात से कि कहीं अल्लाह जो है वो पकड़ ना ले, और इस बात पर हम यकीन रखें कि हमें मरना है, अल्लाह के पास जो है वो हाजिर होना है। और मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रब की रजा होना चाहिए। अपने नफ्स को, अपने दिले नादा को ये बात बार बार समझाएं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, और अल्लाह ताला जो है वो चेहरे नहीं देखता, अल्लाह ताला अमलों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अमलों के नीचे जो नियतें होती हैं और चेहरों की बजाय जो सीनों में दिल होते हैं, अल्लाह दिलों को देखता है और नियतों को देखता है कि ये अमल किस नियत और किस इरादे से किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको ईमान की दौलत से नवाजे और हुस्ने अमल की तौफीक अता करे और उन लोगों में शामिल कर ले जिनके लिए नेमत सवाब है, वह सुनत मुर्तफका है, और उस शख्स के उन जैसे लोगों के साथ सोहबत सवाले दे दे जो कि अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, युरीदूना वजहा, और हमें जो है वो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहना जो है अपनी जिंदगी का मामूल बनाना चाहिए। मसलन हम क्लास में बैठे हैं تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ نے آپ کے وقت میں برکت دی، آپ نے کھانا بھی پکا لیا، آپ نے سارے ضروری فرائض بھی پورے کر لیے، تو کیا ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ، بار بار یہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کے زور کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی تائید سے، اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ بنائے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، اور ہر گھڑی ہر پل اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تو میرے ماتھے کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر مجھے صراط مستقیم پر چلا. تیری دنیا بڑی خوبصورت ہے، دن ہمارا دل جو ہے وہ لپک لپک کر دنیا کی طرف جاتا ہے، دوسری طرف شیطان ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جو بہکاتا ہے اور ٹانگے پسار کر لمبی نیند لینے کو دل چاہتا ہے، ادھر ادھر بیٹھنے کو، باتیں کرنے کو، اور بعض اوقات کچھ اور نہیں تو شکوا شکایت کرنا، نشکری کرنا، اور جو ہے وہ دوسروں کی باتوں پر دکھی ہو جانا، اور نیکیاں جو ہیں اس سے ادھر ادھر ہونے لگنا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ دنیا کی زندگی کی آزمائشیں ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت سے کیا مانگنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم ارزقنی التفکر فتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارف بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اور ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعله لی اماما ونورا وہدا ورحما، اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أنت اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اور مجھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا بڑی ہی پسند ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، کہ اللہ تو مجھے اپنا ایسا خوف دے دے جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان جو ہے وہ پردہ بن جائے، کہ تیرے خوف کی وجہ سے میں گناہ نہ کر سکوں. اور دوسری یہ دعا بھی مجھے بڑی پسند ہے کہ یا رب العزت، کہ میرا جو دنیا کا سب سے بڑا غم ہے نا، بس دین کو بنا دے کہ مجھے تیری اطاعت کرنی ہے، اور دنیا کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ ہمارے دین کے معاملے میں ہمیں مصیبت میں مبتلا نہ کرنا، اور دنیا کو ہمارا بڑا غم نہ بنانا، ہمارا بڑا غم آخرت بننی چاہیے. اور اے اللہ تو ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے. ولا تسلط علینا من لا يرحمنا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.